हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको जन्माष्टमी महोत्सव में आने के लिए बधाई हो। गांववा इस्कान केंद्र में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। जन्म और अष्टमी दो शब्द हैं। अष्टमी का तिथि है आठवां दिन, तो अष्टमी कहते हैं। जैसे राम जी का जन्म होता है नौमी की, तो नौमी बोलते हैं, तो अष्टमी आठवें दिन को कहते हैं आठवां दिन। और जन्म का मतलब भगवान अजन्मा है, उसने जन्म ले लिया। वैसे तो जन्म सबका होता है, तो उसको कोई नहीं जन्माष्टमी बोलता है, लेकिन भगवान जो जिसका कभी जन्म नहीं होता है, अजन्मा है, उसका जन्म हो गया तो बड़ा आश्चर्य हो गया, तो उसका नाम जन्माष्टमी हो गया। किसने जन्म लिया था अष्टमी को? कृष्ण भगवान ने। जन्माष्टमी शब्द कहने से भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है कि अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तो हम जन्माष्टमी कहते हैं। और प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इतना सारा खर्चा करके पंडाल बनाते हैं, घर से सब गाड़ियों में चढ़ के आते हैं, क्यों? कुछ तो हमारा रिश्ता है तब ना, भगवान से कोई न कोई हमारा रिश्ता है तब ये उत्सव मनाते हैं, नहीं तो हम क्यों मनाते? तो आपको ये समझना है कि हमारा भगवान के साथ कोई न कोई संबंध है, कोई न कोई रिश्ता है, कोई न कोई हमारा और भगवान का बीच में प्रेम का कोई आदान प्रदान है, इसलिए हम प्रतिवर्ष ये कार्य करते हैं। तो ये बात तो ठीक समझ में आ रही है कि भगवान हमारे साथ, हमारा और भगवान का कोई रिश्ता है तब तो हम मनाते नहीं, तो क्यों मनाए? अपने बेटे का मनाते हैं, परिवार का मनाते हैं, तो लेकिन सब लोग, वो तो अपने घर में हर एक आदमी मनाता है, लेकिन ये सब लोग मनाते हैं इसका, तो सब लोग क्यों मनाते हैं? हमारा कोई रिश्ता है तब मनाते हैं ना। इसी रिश्ते को ढूंढना हमारे जन्म का लक्ष्य है। हमारे ने जो जन्म लिया है इस दुनिया में, इसका उद्देश्य है उस रिश्ते को ढूंढना जो श्री कृष्ण के साथ हमारा है। ये रिश्ता ढूंढना, इसको कृष्ण भावना अमृत कहते हैं। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है श्री कृष्ण के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको हम पहचान लें और उस रिश्ते में भगवान के साथ प्रेम से अपना संबंध स्थापित करें। तो जन्माष्टमी जब मनाते हैं तो दो तीन नाम एकदम हमारे दिमाग में आते हैं। कृष्ण आता है, और फिर क्या आता है? देवकी और वसुदेव आते हैं, फिर नंद और यशोदा आते हैं। ये नाम तो सबके दिमाग में आते हैं कि नहीं आते? जन्माष्टमी आई तो नंद यशोदा का नाम आएगा, वसुदेव और देवकी का नाम आएगा, बलराम जी का नाम आएगा। ये सब नाम आते हैं क्यों? क्योंकि इन सबका भगवान के साथ संबंध है, ये सब भगवान के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं। जो भगवान के साथ रिश्ते में जुड़ जाता है उसका नाम अमर हो जाता है। जैसे भगवत गीता उठाते हैं तो किसका नाम याद आता है? अर्जुन, कृष्ण, पार्थ, सारथी। तो अर्जुन का नाम भगवान श्री कृष्ण के साथ आता है ना अपने आप भगवत गीता उठाते ही। क्यों? क्यों? अर्जुन ने भगवान के साथ मित्रता का रिश्ता जोड़ लिया था, भगवान का दोस्त बन गया था, मित्र बन गया था, फ्रेंड बन गया था। तो जो भगवान से रिश्ता जोड़ता है वो अमर हो जाता है। तो हमारे हर वर्ष जन्माष्टमी मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये, हमारा भी भगवान के साथ कोई रिश्ता है। एक साल, दो साल, तीन साल, दस साल, पचास साल हम मनाते मनाते एक दिन अपने रिश्ते को पहचान लें तो हमारा जीवन भी अमर हो जाएगा और जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। ये हमारे जन्माष्टमी मनाने का उद्देश्य है। भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि गीता का ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे राजाओं की परंपरा में ये ज्ञान आया। और फिर कहते हैं कि समय आने के साथ ये ज्ञान गुम हो गया, लुप्त हो गया, डिसअपियर हो गया। और फिर कहते हैं अर्जुन वही ज्ञान मैं आज तुमको देने जा रहा हूं। अर्जुन वही गीता का ज्ञान जो मैंने सूर्य देव को दिया था, योग का वो ज्ञान जिसके द्वारा मेरे साथ रिश्ता जोड़ा जा सकता है। कौन सा ज्ञान भगवान ने भगवद गीता में दिया है? योग का ज्ञान दिया है। गीता क्या है? योग शास्त्र है। और योग का अर्थ होता है भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ना, भगवान के साथ हाथ मिला लेना। तो ये ज्ञान भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुमको देता हूं। अब अर्जुन सावधान हो गया कि मेरे को ज्ञान दे रहे हैं तो मैं भगवान श्री कृष्ण की साख को, कि लोग भगवान के ऊपर कोई उंगली न उठाएं, इसलिए एक प्रश्न पूछ लिया। अर्जुन ने कहा आपने सूर्य को देव को कैसे ज्ञान दिया? सूर्य देव तो बहुत पुराना है, आप तो हमारी उम्र के हमारे साथ खड़े हैं, आपने सूर्य देव को ज्ञान दिया ये मैं कैसे मान लूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया, अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, उन सबको मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, हर बार तुम मेरे साथ आए हो लेकिन तुम नहीं जानते और मैं सब जानता हूं। यही अंतर है भगवान में और हम में। भगवान पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, अब क्या हो रहा है सब जानते हैं, लेकिन हमको कल क्या हुआ था वो भी नहीं याद रहता है। अगले जन्म की बात तो छोड़ो, आज से 6 महीना पहले आज के दिन आप क्या कर रहे थे, कहां थे, इस वक्त आपको याद नहीं आएगा। तो हम भूल जाते हैं। क्यों हम भूलते हैं? भगवान भूलते क्यों नहीं है? हम सब कुछ भूल जाते हैं और भगवान को भूलता नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा शरीर बदलता रहता है। हम बच्चे के शरीर से जवान होते हैं, जवान से बूढ़े हो जाते हैं। जब शरीर बदलता है तो बातें सब भूल जाती हैं, लेकिन भगवान का शरीर कभी बदलता नहीं है। भगवान का शरीर नित्य न्यूतन है। नित्य न्यूतन कहते हैं नए को, हर समय नया है। भगवान नव यौवन है, सदा एक ही आयु में रहते हैं, कभी छोटे बड़े नहीं होते हैं। उनका शरीर हमारी तरह हार्ड मास चाम का बना हुआ नहीं है। जो चीज हमारी आत्मा जिस चीज का बना हुआ है, जैसे आत्मा हमारा सच्चित आनंद अमर है, शरीर हमारा नाशवंत है, ऐसे भगवान का पूरा शरीर ही चिन्मय है, उसमें हार्ड मास है नहीं। तो शरीर में परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए उनको कुछ भूलता नहीं है। तो भूलने का कारण क्या हुआ? भूलने का कारण हुआ ये भौतिक शरीर। जब तक ये भौतिक शरीर होता है तब तक हमको सब भूल जाता है। अब भगवान ने कह दिया अर्जुन और तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं। तो अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, क्या बोला? आपका भी जन्म होता है, आपको जन्म लेना पड़ता है क्या? जन्म लेने को तो शास्त्र में बहुत बुरा कहा गया है, और ये जन्म लेना पड़ता है, फिर मरना पड़ेगा, तो जन्म लेना को अच्छा नहीं माना जाता है। जन्म इस दुनिया में लेने का मतलब है किसी आदमी को जेल में डालना, या मॉरिशस में किसी आदमी को पकड़ के जेल में डालते हैं तो अच्छा समझा जाता है? हाँ, किसी आदमी को पकड़ के जेल में डालते हैं तो मॉरिशस में क्या समझते हैं? बहुत बुरा हुआ, यही कहते हैं ना, बेचारे को जेल में डाल दिया, बहुत बुरा हो गया। जैसे हम किसी आदमी के बारे में सुनते हैं जेल में गया है तो बहुत दुख होता है, ऐसे भगवान के धाम में रहने वालों को बड़ा दुख होता है जब हमको इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। कहते इस बेचारे को जेल में डाल दिया गया, ये दुनिया में हम आते हैं तो हमको जेल में डाल दिया गया। ये दुनिया भौतिक जगत जेल है, और ये जेल कौन चलाता है? इस जेल को भगवान की शक्ति दुर्गा देवी इस जेल का संचालन करती है। उसका नाम दुर्गा क्यों है? दुर्ग कहते हैं किले को, फोर्ट, जिस जेल खाने का बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उस किले की मालिक है, तो इसको कहते हैं दुर्गा। दुर्ग को, दुर्ग के अंदर सबको संभाल के रखने वाली, और हाथ में क्या है? त्रिशूल, सबको दंड देती रहती है। त्रिशूल 3 ताप का संकेत करता है, 3 तकलीफें। कौन सी? आदि देवक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। कुछ शरीर से हमारे को कष्ट आते हैं, हाँ, सर में दर्द होता है, बुखार आता है, बड़ी बीमारी होती है, कैंसर होता है, ये शरीर का दुख है। कुछ दूसरे प्राणी हमको दुख देते हैं, मच्छर काटता है तो भी दुख होता है, कुत्ता काटता है तो भी दुख होता है, लेकिन सबसे दुख हमारे अपने रिश्तेदार हमको देते हैं, हमारे अपने सगे संबंधी अजीज हमको बहुत परेशान करते हैं। और तीसरा दुख प्रकृति का कोप होता है, कभी तूफान आता है, कभी साइक्लोन आता है, कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आ जाती है, बहुत वर्षा हो जाती है तो सबको तकलीफ, कभी युद्ध हो जाता है, तो ये सारे तकलीफें इस धरती के ऊपर सबको भोगनी पड़ती है क्योंकि ये जेल है। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आप जन्म लेते हैं क्या? तो एकदम भगवान सावधान होकर अर्जुन को कहा, अजोपीसन अव्यात्मा, मैं अजन्मा हूं, मेरा शरीर अव्यय है, कभी नाश नहीं होता, मैं ज्यों का तू रहता हूं। अजोपीसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपीसन, और ये जितने भूत हैं, भूत किसको कहते हैं? आप भूत से डरते हो मॉरिशस में? यहां किसी को भूत लगता है नहीं? मॉरिशस में भूत भूत नहीं है? हाँ, जब किसी को भूत लगता है तो आदमी क्या कहता है? वो अपने आप को भूल जाता है और भूत की भाषा बोलता है, ऐसे होता है ना, भूत लगता है। हाँ, भूत किसी को लगे, भूत नहीं लग जाए तो आदमी अपने आप को भूल जाता है, जो भूत उसके अंदर घुस जाता है, भूत अपनी बात करता है। तो भगवान कहते हैं, इस दुनिया में जिनको भेजा जाता है ना, उनको पांच भूतों का शरीर दिया जाता है। पांच भूतों का शरीर, पांच भूत का मतलब प्रकृति के पांच भूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इसको पांच भूत कहते हैं। लेकिन ये भूत हमको मिलता है तो हम अपनी पहचान भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हम भूत अपने आप को शरीर ही मानते हैं, कोई नाम पूछता है तो शरीर का नाम बोलते हैं, कहां के रहने वाले हो तो जगह का नाम बोलते हैं। आत्मा का कोई घर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं, तो आत्मा को तो हम भूल गए, हम तो अपने आप को शरीर मान के बैठ गए। मॉरिशस का हूं मैं, हाँ मैं इंडिया का हूं, मैं इंग्लैंड का हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया का हूं, तो हमने तो आत्मा को भूल दिया, हमको भूत लग गया। लेकिन भगवान कहते हैं, इन भूतों का मैं ईश्वर हूं, ईश्वर का मतलब मैं इनका मालिक हूं। भूतानाम ईश्वरोपीसन, प्रकृति संभावा है, मैं अपनी योग माया से जब चाहूं तब प्रकट होता हूं। बाकी सब लोग जन्म लेते हैं अपने कर्मों के कारण, और मैं जब जन्म लेता हूं इस दुनिया में तो मेरी योग माया से मैं प्रकट होता हूं। किसका अर्थ क्या है कि भगवान कहीं और से आते नहीं है, यही है, हमको दिख नहीं रहे, और जब वो कृपा करते हैं तब हमको देखने में आ जाते हैं। जैसे आप ड्रामा करते हैं, यहां पर्दा होता है तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसके पीछे खड़ा होता है जो ड्रामा करता है, वो उसके पीछे खड़ा होता है। पर्दा है तो दिखता नहीं है, पर्दा हटाओगे तो दिख जाएगा। ऐसे भगवान अंदर खड़े हैं, यहां भी खड़े, कहां खड़े हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। आप लोग जितने बैठे हैं सबके दिल में भगवान बैठा हुआ है, और दोनों के बीच में बैठा हुआ है, कण कण में भगवान है लेकिन दिख नहीं रहा। कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। तो अर्जुन ने पूछ लिया, फिर आप जन्म क्यों लेते हैं, आप लेते क्यों है जन्म? तब भगवान ने ये प्रसिद्ध श्लोक कहा जो सबको आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्योतथानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ये श्लोक भगवान ने कह दिया, अर्जुन जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब युग युग में धर्म को स्थापन करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन ने कहा, ये धर्म को स्थापन करने के लिए तो अपने बेटे को भेज देना, काम कर लेगा, धर्म की स्थापना तो बेटा भी कर सकता है। जैसे ईसाई कहते हैं हजरत ईसा, जीसस क्राइस्ट भगवान का बेटा है, सन ऑफ गॉड, तो बेटे को भेज के काम चला सकते हैं, आप क्यों आते हो? अथवा आप अपना कोई प्रतिनिधि भेज दो, आपका संदेश वाहक भेज दो। जैसे मामंडन में हजरत मोहम्मद भगवान का पैगंबर है, संदेश वाहक है, तो उससे भी धर्म की स्थापना तो हो सकती है, तो फिर आप स्वयं क्यों आते हैं? किसी को भेजो, कोई संत महात्मा को भेजो, और सिखों के लिए गुरु नानक जी आए तो धर्म की स्थापना हो गई। अब जहां जहां देखें कोई न कोई भगवान ने साधु संत महात्मा भेजा है, धर्म की स्थापना तो हो गई, तो आप क्यों आते हैं? तब भगवान ने कहा परित्राणाय साधु नाम, मेरे भक्त मुझसे मुझे जो प्रेम से बुलाते हैं तब मैं उन भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए आता हूं। विनाशाय च दुष्कृताम, और जब आ ही जाता हूं तो दुष्ट लोग जो मेरे भक्तों को संकट देते हैं उनको नाश कर देता हूं। तो मुख्य भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य क्या है? अपने भक्तों को दर्शन देना, अपने भक्तों के प्रेम में बंध के भगवान इस धरती के ऊपर आते हैं। प्रेम ही केवल भगवान को इस धरती के ऊपर अवतार लेने के ऊपर बाध्य करता है, नहीं तो किसी काम के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। तो अधर्म का अर्थ यह है जब भगवान के प्रेम करने वाले कम हो जाते हैं तो इस संसार में संकट बढ़ जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने हरे कृष्ण संस्था की स्थापना की और कहा कि इस इस्कान के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। इस्कान के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम के रूप में जन्म लिया है और इसका उद्देश्य है लोगों को भगवान का प्रेमी बनाना। हमने ये कहा था कि ये सत्संग क्यों करते हैं हर साल और फिर हर रोज हम करते हैं, इसलिए कि हम भगवान के साथ अपना प्रेम का रिश्ता पुनः स्थापित कर सके, जोड़ सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो ये संस्था का उद्देश्य है आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको जोड़ने में सहायता करे, आपका हेल्प करे, आपको मदद करे, भगवान के साथ आपका संबंध जोड़ने में। ये काम दुनिया में कोई नहीं करता है। रोटी खिला सकता है, कोई दवाई दिला सकता है, कपड़ा दिला सकता है, लेकिन भगवान से संबंध स्थापित केवल भगवान के भक्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये सबसे उत्तम सबसे बढ़िया काम है लोगों को भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उनका अपना रिश्ता है वो याद दिलाया जाए। कैसे? ऐसे भगवान के जन्मदिन का उत्सव मनाकर, फिर भगवान के जन्मदिन के बाद दूसरे दिन नंद बाबा का उत्सव होता है, फिर भगवान की छठी मनाते हैं, फिर आगे थोड़े दिन जाएंगे तो फिर एक और भगवान के अवतार की रामनामी का उत्सव मनाने का टाइम आ जाएगा। आगे जाएंगे फिर भगवान के दूसरे अवतार नरसिंह का उत्सव मनाएंगे, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा मनाएंगे। ऐसे हर दिन भारत संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में हर दिन उत्सव है, हर दिन उत्सव है, इसलिए कि हम कभी भगवान को न भूलें। जो समय भगवान को भूलते हैं वही समय हमारा मृत्यु के समान है, जो समय भगवान को याद रहते हैं वही हमारा समय सफल होता है। तो इसलिए वही समय सफल है जब भगवान की याद है। भगवान भूल गए इसलिए हम जब सो जाते हैं तो लोग कहते हैं मरने के समान है, सोया हुआ आदमी मुर्दे के समान है, तो अपने अपने बेटे को भी नहीं पहचानता है, पास में सोया हुआ गिर जाए तो परवाह नहीं, पता नहीं लगता है, सोए हुए को पता लगता है क्या? तो सोया हुआ मरने के बराबर है। भगवान भूल जाता है तो आदमी मुर्दा हो जाता है, भगवान याद है तो आदमी जीवित है, जीवित जीवन है। और भगवान की यादगिरी रहे तो जीवन मानना चाहिए, नहीं तो जीवन बेकार व्यर्थ, ऐसे टाइम खा पी के पूरा करना, ये तो पशु भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना, ये तो पशु भी करते हैं। पेट भर के खाने के लिए तो कुत्ता गधा भी खा लेता, सोने के लिए वो भी अपने लिए कोई जगह ढूंढने के निकाल लेते हैं, बच्चे तो वो भी पैदा कर लेते हैं, और कोई पत्थर मारता है तो कुत्ता भी उसको काटने के लिए भागता है। तो हमने अपना रक्षा करने का कोई सुरक्षा का संबंध बना लिया, बच्चे पैदा के लिए कर लिए, भोजन की व्यवस्था अच्छी बना ली, सोने के लिए गधे ले लिए, इससे तो हम आदमी नहीं बन गए, पशु के पशु रह गए। धर्म अधिको विशेष, अगर धर्म को जीवन में धर्म के ऊपर चलेंगे तो मानव बनेंगे। कितने साल से मॉरिशस में आप रह रहे हैं? 50 साल से कुछ रह रहे हैं, कोई 30 साल से, 40 साल से? यहां कुत्तू ने कोई अपना स्कूल खोला है आज तक? गधों ने, कुत्तू ने स्कूल खोला है, अस्पताल खोला है, घर बनाया है? नहीं बनाया ना, उनको बुद्धि नहीं है ना, खा ही रहे हैं। आदमी को भगवान ने बुद्धि दी, अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया, घर बनाया, इन्होंने आज तक नहीं बनाया बेचारों ने। तो हम केवल पशु जैसे ही काम करते जाएं और धर्म का आचरण जीवन में न करें तो हमारा जीवन भी पशु के समान है। और ये आध्यात्मिक शिक्षा पशु के स्तर से ऊपर उठाने के लिए है, ताकि हम मानवता के महत्व को समझें। और मानवता का महत्व है धर्म को समझना। और धर्म कौन देता है? भगवान कहते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए मैं आता हूं। अर्जुन ने कहा बात तो अच्छी है, आप अपने भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं, लेकिन एक समय में भक्त आपको बुलाता है, आप आते हैं, लेकिन इतना बड़ा अवतार लेने का काम सिर्फ एक भक्त के लिए? तब भगवान ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बोल दिया, जन्म कर्म च मे देव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नएति माम एति। सो अर्जुन, अर्जुन जब मैं आ जाता हूं अपने भक्तों के बुलाने के ऊपर, तो मेरा जो आना है ना वो दिव्य है, वो अलौकिक है, वो ट्रांसेंडेंटल है। और जब मैं आ जाता हूं तो जो कुछ भी मैं करता हूं वो भी अद्भुत है, वो भी आश्चर्यजनक है, वो भी अलौकिक है। और जो इसको केवल सुनेगा समझेगा तत्व से, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो आज 5000 साल भगवान के अवतार लिए को हो गए, आज भी हम बैठ के मॉरिशस में भारत से हजारों मील दूर कृष्ण कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। कब कृष्ण हुए, उनके जन्म लेने को 300 साल हो गए। आज हम इतने भारत से दूर जहां भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, और हम गांवा में बैठकर कृष्ण कथा कर रहे हैं, और कोई ऑस्ट्रेलिया में कृष्ण कथा कर रहा है, कोई न्यूजीलैंड में कृष्ण कथा कर रहा है, कोई अमेरिका के किसी हर एक अमेरिका के बड़े शहर में कृष्ण कथा हो रही है जन्माष्टमी की। तो ये कृष्ण के जन्म लेने का, अवतार लेने का उद्देश्य है कि जन जन में, घर घर में, नगर नगर में, हर आदमी के मन में भगवान श्री कृष्ण की कथा, उसके लीला मन के अंदर ऐसे घूमे जैसे टेलीविजन के अंदर भगवान, टेलीविजन में आप फिल्म देखते हैं ना, कोई सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं ना, जैसे वो घूमती है, ऐसे हमारी दिल के अंदर हर समय भगवान श्री कृष्ण की फिल्म चलती रहे। अब आप जन्माष्टमी के दिन आपके दिमाग में क्या फिल्म चलेगी? ये फिल्म चलेगी श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, मुझे भगवान श्री कृष्ण के विषय में विस्तार से बताओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पितामह अर्जुन की रक्षा की थी, उनका रथ चलाया था, भीष्म कर्ण द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं से मेरे पितामह अर्जुन की रक्षा की थी। अरे पितामह को छोड़ो, मैं स्वयं अर्जुन, मैं स्वयं परीक्षित अपनी माँ उत्तरा के गर्भ के अंदर अश्वस्थामा के ब्रह्मस्त्र से जल रहा था, श्री कृष्ण मेरी माँ उत्तरा के उदर में प्रवेश किया और गदा को चक्कर की तलाह चलाकर मेरी रक्षा की थी। अरे वो तो मेरा संबंध इतना घनिष्ठ है उसके साथ, वो तो मेरा भाई हुआ, क्योंकि उसी पेट के अंदर प्रवेश किया जिसमें मैं था उत्तरा के, उसकी तो कथा मेरे सुनने की बहुत इच्छा है। बस आप कथा उसकी सुनाते जाइए, न मुझे प्यास है न मुझे भूख है, मुझे तो कथा अमृत मिल रहा है। बस 7 दिन जीवन के हैं तो मैं कथा ही सुन के अपने जीवन को सफल करना चाहता हूं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वह परीक्षित, वह कृष्ण की कथा में इतनी आपको रुचि है, इतना आपको रति है, इतना आपको आनंद आ रहा है, आपने अपना जन्म सफल कर दिया। कृष्ण कथा सुनने के लिए मन में उत्सुकता हो, मन में शौक पैदा हो और कथा सुनने में टाइम बीत जाए पता नहीं लगे, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा हुई है। और फिर एकदम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक समय की बात है, धरती के ऊपर राजाओं ने अत्याचार बढ़ा दिया, बहुत बड़ी राजाओं की सेना धरती को रोनती हुई, अपराध का कार्य करती हुई लोगों को दुख देने लगी, तो पृथ्वी बिचारी बहुत दुखी हो गई और पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने को गई। ये फिल्म चल रही है, कथा नहीं है। आप अपने आप को भागवत की इस कृष्ण लीला को हृदय में देखना शुरू करो। थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ भूल जाओ, दुकान मकान घर परिवार सब भूल जाओ, आधे घंटे के लिए आप अपने हृदय के टेलीविजन के अंदर, मन के अंदर आप कृष्ण की इस लीला को सुनो। क्या अब पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण किया है, कहाँ गई है? सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी के पास गई है। ब्रह्मा जी चार मुख वाला वहाँ बैठा हुआ है अपनी ऑफिस में। ब्रह्मा जी पृथ्वी के क्या लगता है? ब्रह्मा जी भी पृथ्वी का बेटा है, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु का बेटा है और पृथ्वी विष्णु की पत्नी। ये पृथ्वी विष्णु की पत्नी है, ये न फ्रांस वालों की है, न इंग्लैंड वालों की है और न हमारी है, ये तो भगवान विष्णु की है। इसको जो कहता है मेरी है वो मूर्ख है, और जो इसको बेचता है वो बेवकूफ है। और दुनिया सारा, आज दुनिया के अंदर पृथ्वी जो भगवान की है उसको बेच रहे हैं, इंच और फुट में बेच रहे हैं मूर्खों की तरह। पृथ्वी हंसती है कि तुमसे पहले कितने आए चले गए, किसी की आज तक हुई है? ये मॉरिशस कभी तो फ्रेंच लोगों के इसको समझते थे हमारा है, लेकिन वो अंग्रेज आए तो उनको भगा दिया, फिर अंग्रेज ने समझा हमारा, आज वो भी चला गए। आज आप समझते हो हमारे, कल कोई दूसरा आएगा थप्पड़ मार के भगा देगा तो करोड़ों आगे बैठ जाएगा। पृथ्वी हंसती है कि मूर्ख कई समझते हैं कि हमारा है हमारा है, ये किसी की नहीं है, ये भगवान की है। जो इसका बेटा बनेगा वो सुखी रहेगा, जो इसका मालिक बनेगा वो मूर्ख रावण की तरह हमेशा दुखी रहेगा और लंका भी उसकी छिन जाएगी। तो पृथ्वी अपने बेटे ब्रह्मा के पास गई, बोला मेरे ऊपर अत्याचार, झूठे पापी अत्याचारी राज कर रहे हैं। इस वक्त भी दुनिया के अंदर सब लोग जो राज कर रहे हैं वो सारे ही अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, हर प्रकार का बदमाश है। पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा भार और संकट है। इस वक्त भी दुनिया के अंदर लोग बहुत दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने वहां से इंद्र जी के पास जाके, इंद्र चलो हमारे साथ, इंद्र को साथ लिया और कैलाश के ऊपर जाके त्रिपुरारी भगवान शंकर को साथ लिया और सबको लेकर क्षीर सागर के तट के ऊपर ब्रह्मा जी ने जाकर पुरुष सूक्त के उच्चारण से भगवान श्री विष्णु की प्रार्थना की। और ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान श्री विष्णु ने संदेश भेजा। ब्रह्मा जी ने सुना कि भगवान विष्णु कहते हैं पृथ्वी को, बोलो तेरे दुख का मुझे पता है, तुम्हें जो पीड़ा है मैं जानता हूं। अगर पति को पता नहीं हो कि मेरी पत्नी को क्या संकट है तो वो पति भी कैसा है? भगवान कहे कि मुझे पता नहीं है तो ये अच्छी बात तो नहीं है। पृथ्वी भगवान की पत्नी है। भगवान ने कहा मैं पृथ्वी के संकट को ठीक तरह से जानता हूं। ब्रह्मा जी तुम सब देवताओं को बोलो कि मैं वसुदेव और देवकी के घर में प्रकट होऊंगा, और ये सब देवता यदुवंश में जाएं, अपनी स्त्रियों के साथ जन्म लें और आप इसकी तैयारी करो, अब आपका दुख दूर है। ब्रह्मा जी ने यह संदेश देवताओं को बताया। पृथ्वी, ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए, पृथ्वी वापस धरती के ऊपर आई। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये बात तो हो गई देवताओं के पास, इस धरती के ऊपर महाराज सोरसेन का राज था मथुरा में, और महाराज सोरसेन के दो बेटे थे उग्रसेन और देवक, दोनों भाई थे। उग्रसेन का बेटा था कंस और देवक की बेटी थी देवकी। जैसे जनक की बेटी को जानकी कहते हैं, ऐसे देवक की बेटी को देवकी कहते हैं। और भी पुत्रियां थी लेकिन एक विशेष पुत्री थी देवकी। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवकी के विवाह के लिए वसुदेव को चुना गया और देवकी और वसुदेव का मंगल विवाह का कार्य हुआ। देवकी की बारात 15 दिन के लिए रुकी मथुरा में, बड़े उत्सव के साथ आए बारातियों को खिलाया पिलाया, मौज हुआ। विदाई के समय पिताजी ने 400 हाथियों में सोने की माला डाल के और कई रथ घोड़े और दासियां जहेज में दिए देवकी को। वसुदेव और देवकी रथ के ऊपर सवार हुए अपने घर जाने को, तब कंस अपनी बहन से प्रेम करता था रथ के चलाने के लिए। राजा है कंस, लेकिन फिर भी बहन के प्रेम के कारण रथ का सारथी बन के घोड़ों का लगाम हाथ में ले लिया। कंस रथ को चला रहा है, चारों ओर से बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं और दुम दुबियां बज रही हैं, शरनाइयां बज रही हैं, शादी की विदाई हो रही है। अचानक आवाज सुनाई दिया आकाशवाणी का, मूर्ख कंस, जिसका तुम रथ चला रहे हो इसी का आठवां गर्भ तेरा काल। सब बाजे बंद हो गए, सब लोग आश्चर्य से देखे, क्या हुआ, क्या कहा गया, किसने कहा, कहां से आवाज आया। लेकिन कंस थोड़ी देर पहले तो बहन से बहुत प्रेम कर रहा था, और एकदम दुष्ट कंस जो कौन था, कंस कौन था, अगरसिंह का लड़का था, ऐसी बात नहीं है। कंस कालनेमी नेम का असुर था, राक्षस था, जो अगरसिंह के घर में उसकी पत्नी पद्मावती से प्रकट हुआ था। अगरसिंह का बेटा नहीं था, कालनेमी राक्षस का अंश था। पद्मावती को कालनेमी राक्षस ने उग्रसेन के रूप में जाकर बलात्कार किया, और कंस के रूप में वो राक्षस का अंश पैदा हुआ, और उसका आने का उद्देश्य केवल भगवान विष्णु से विरोध और वैर था। आज कंस की बहन के साथ प्रेम था, एकदम में समाप्त हो गया। कंस ने लगाम घोड़े का फेंक दिया और देवकी के बाल पकड़ लिए और हाथ में तलवार निकाल के मारने को तैयार हो गया। देवकी ने जब आकाशवाणी सुनी कि इसका आठवां गर्भ, पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, गर्भ, कंस का वध करेगा, भगवान प्रकट होंगे, देवकी तो अंदर में बहुत खुश थी कि मेरे घर में भगवान आएंगे। मृत्यु सर के ऊपर था, लेकिन देवकी को केवल कृष्ण ही दिखाई दे रहा था। देवकी न भाई को कहती है कंस मुझे मत मारो, न पति को कहती है कि मेरी रक्षा करो। शांत देवकी खड़ी है, और वसुदेव ने सोचा कि मुझे तो अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। तब वसुदेव ने कंस की प्रशंसा की, कंस आप सूरवीर हो, एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाना आप जैसे सूरवीर को अच्छा नहीं लगता है, और ये स्त्री भी आपकी बहन है, और बहन भी शादी के शुभ मंगल कार्य के समय इसका मारना उचित नहीं है। मृत्यु हरेक का समय के ऊपर आता है, आप ये मत समझो कि इसको आपको मारने वाला आएगा, वो कहीं और भी से आ सकता है। कंस ने कुछ नहीं माना। तब वसुदेव ने कहा, विचार किया कि कैसे भी देवकी की अभी रक्षा करनी चाहिए, पति को अपनी स्त्री की रक्षा करने के लिए सब युक्ति सब बुद्धि को उपयोग में लाना चाहिए हर समय, और कितना भी संकट हो कष्ट हो लेकिन अपनी स्त्री को बचाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। अब वासुदेव ने विचार किया कि अभी इस वक्त कैसे भी देवकी को बचाना चाहिए, और विचार ये उसका मन में आया, कंस तुम बड़े दयालु हो, सोमे हो, तुम्हें देवकी से तो खतरा नहीं है ना, इसके बच्चों से है ना, देवकी तो तुम्हें नहीं मारेगी ना। नहीं, मुझे देवकी नहीं मारेगी, तो इसके गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारेगा ना। तो मैं वसुदेव तुम्हारे को वचन देता हूं, इसने जो भी बच्चे को जन्म दिया मैं आपको लाके दे दूंगा। ये बात कंस को समझ में आ गई। कंस ने कहा, ये बात ठीक है, आप इसके जो भी गर्भ होंगे मुझे लाके दे देंगे। लेकिन संस्कृत में ये श्लोक जहां बोला है वसुदेव ने, उसमें बहुत बड़ी चतुराई है कि कंस तुम्हें इसके सब बच्चे मैं लाके दूंगा, जिससे भय है वो नहीं, जो तुम्हें मारने वाला है वो नहीं लाके दूंगा, बाकी सब लाके दूंगा। अगर कोई बाप अपने बेटे को कसाई कंस के हाथ में देके आ जाए तो क्या भगवान उनके घर में आएगा क्या? जो भगवान की रक्षा, भगवान के साथ प्रेम इतना करता है, वो रक्षा नहीं करता हो तो उधर भगवान क्यों आएंगे? तो कंस ने बहुत बुद्धिमानी से, उस कंस को बड़ी बुद्धिमानी से वसुदेव ने कहा, इसके सारे बच्चे तुम्हें दे दूंगा जिनसे भय है उसको छोड़कर। और फिर कहते हैं वसुदेव अपने घर चले गए, कंस अपने घर चले गए। एक साल के बाद कीर्तिमान नाम का बच्चा हुआ वसुदेव और देवकी को। वसुदेव अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर देवकी की आंखों में आंसू देखता हुआ भी अपने वचन को सत्य करने के लिए साधु है, सत्यवादी है, बच्चे को लेके कंस के पास आया। कंस ने बच्चे को देखा, कहा इससे तो मुझे डर नहीं है, आठवें बच्चे से डर है ना, ले जाओ इसको। वसुदेव कहते कंस को क्या हो गया, ये तो मारने वाला था, इतना दयालु कंस कैसे हो सकता है, विश्वास तो नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चे को लेकर वसुदेव वापस जाने लगा। इतनी देर में नारद वहां पहुंच गया और नारद ने आके कंस को समाचार भेजा कि मैं मिलने आया हूं। कंस ने कहा, नारद का स्वागत किया, बड़ा आसन के ऊपर बिठाया, माला पहनाया। तब नारद ने कहा, मैं आपकी पूजा से बहुत संतुष्ट हुआ हूं कंस, मैं तुम्हारे को एक बहुत रहस्य की बात बताता हूं, कॉन्फिडेंशियल बात बताने जा रहा हूं। मैं भी देवताओं के साथ गया था, ब्रह्मा जी वालों के साथ, और मैंने देखा है सारे देवताओं ने यदुवंश में जन्म लेना शुरू कर दिया है। ये नंदो, ये वृषभानो, ये यदुवंशी, ये सब नंद बाबा आदि वसु हैं, और ये सारे देवता हैं, और भगवान विष्णु सारे असुरों को मारेगा और तेरे को मारने के लिए आ रहा है। तुम्हें देवताओं की गिनती समझ में नहीं आती है कि पहला कौन, आठवां कौन? ये देवता टेढ़ी गिनती करते हैं, ये एक भी आठ हो सकता है। ऐसे उंगलियां खड़ी करके नारद ने कहा, तुम गिनो कंस जरा। कंस ने कहा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। बोला, अब यहां से गुनो। बोला, एक तो, बोला आठ एक हो गया ना, अब जिसको तुम आठ कहते वो एक हो सकता है ना, तो ये पहला बच्चा तुमको मारेगा तो क्या पता। बोला, ऐसे नारद जी ने कंस को क्यों कहा, आकाशवाणी ने कंस को क्यों सचेत किया? देवताओं ने कहा, कंस अगर दयालु हो गया और देवकी और वसुदेव से प्रेम करने लगा तो भगवान को आने में देर हो जाएगी, भगवान देर से आएंगे तो लोगों का उद्धार नहीं हो पाएगा, भगवान को जल्दी बुलाने के लिए कंस से जल्दी पाप कराने, बाद में करेगा, अभी करने दो। अब कंस को आया क्रोध और कंस गया देवकी और वसुदेव के महल में। बोला, बच्चा लाओ। बच्चा लेके पत्थर के ऊपर मारा, उनकी आंखों के सामने देवकी और वसुदेव को लाके कारागर में बंद कर दिया। अब वसुदेव और देवकी को कारागर में बंद कर दिया, चारों ओर बहुत बड़ी पुलिस को बिठा दिया, चारों ओर बड़े उसके सैनिक बैठे हुए हैं। हर वर्ष एक बच्चे को जन्म दिया देवकी ने, और हर वर्ष कंस ने उसको पत्थर के ऊपर पटक के मारा। छह बच्चे देवकी के ऐसे देवकी के आंखों के साथ सामने पत्थर के ऊपर मारे गए, और फिर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठकर योग माया को भगवान ने बुलाया। भगवान श्री कृष्ण कहां बैठे हैं? अपने धाम गोलोक में बैठे हैं। योग माया तो कहा, योग माया भद्र इधर आओ। योग माया हाथ जोड़ा, ओम बोलिए, क्या आदेश है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सातवें गर्भ के रूप में मैंने मेरे अपने अंश संकृष्ण बलदेव को देवकी के गर्भ में भेजा है। क्यों भेजा है? बोला, मेरे लिए जगह बनाएगा, मेरा आसन है, वो वहां जगह बनाएगा जहां भगवान कहां बैठते हैं। भगवान कहां बैठ, विष्णु भगवान का आसन क्या है? शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं ना, शेषांतकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ऐसे बोलते हैं ना, शेषनाग के ऊपर वो आसन तो है, तो आसन जाएगा तब भगवान। अब हमको बोला यहां सत्संग करो, ये आसन रखा उसके ऊपर बैठने के लिए, पहले आसन आया फिर हम आए ना, तो पहले आसन आएगा फिर भगवान आएंगे ना, तो बलराम जी आसन के रूप में भगवान का बिस्तर बनाने के लिए आए। देवी को कहते हैं, वैसे बलराम को मैंने विनती की है कि जाकर मेरे लिए बिस्तर बनाए, लेकिन बलराम जी है रोहिणी का नित्य पुत्र, वो रोहिणी नंदन बलराम है। अब एक काम आप करो, आप उस बलराम जी को देवकी के गर्भ से खींच कर ले जाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। योग माया ना के, ये तो मुश्किल काम है, ऐसे कभी होता नहीं, एक एक के पेट से बच्चा निकाल के दूसरे में कैसे ले जाओ? भगवान ने कहा, मेरी कृपा से तुम ये कर पाओगी, और क्योंकि तुम उसको खींच के ले जाओगी इसलिए उसका नाम होगा संकृष्ण, और क्योंकि वो सब ब्रजवासियों को आनंद देगा इसलिए उसको राम कहेंगे, और बड़ा वो बलशाली होगा इसलिए उसको बलदेव कहेंगे। भगवान ने जन्म से पहले बलराम के तीन नाम रख दिए, बलदेव, राम और संकृष्ण। अब देवी को फिर भगवान कहने लगे, देवी इसके बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तेरी बहुत बड़ी पूजा होगी विंध्याचल पर्वत में, तुम्हें दुर्गा भद्रा काली और बहुत से नामों के साथ तेरी पूजा लोग करेंगे। एक काम और भी करना है। क्या काम करना है बोलो भगवान? बोला यशोदा के वहां मेरी छोटी बहन के रूप में जन्म लेना, तुम मेरी अनुजा मेरी छोटी बहन के लिए के रूप में जन्म लेना यशोदा के वहां। देवी वहां से आई, सातवां गर्भ देवकी का गिराया, उठा के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। मथुरा में हाहाकार हो गया कि कंस ने देवकी का गर्भ गिरा दिया। बिचारी को पता नहीं दवा दी क्या कर दिया, देवकी का तो गर्भ ही गिर गया। ये कंस बड़ा क्रूर है, वहां तो कंस को बदनामी मिल रही है। और दूसरे तरफ गोकुल के अंदर 5 दिन के अंदर बलराम जी का प्रकट्य हुआ। बलराम जी का प्रकट्य हुआ, नंद बाबा ने आनंद में होकर हजारों लाखों गाय का दान किया। उस वक्त बलराम जी का दर्शन करने के लिए नारद जी कहते हैं मैं व्यासदेव के साथ, व्यासदेव आए थे वहां, मैं उनके साथ गया था, अन्य ऋषि भी आए थे। जब हम उधर भगवान बलराम जी का दर्शन करने गए तो हमसे नंद बाबा ने पूछा कि आप सब लोग पधारे, ये कौन हमारे घर में प्रकट हुआ है? तब व्यासदेव ने बहुत सुंदर एक बलराम का स्तोत्र पढ़ के सुनाया कि ये अनंत है, ये धरणी धर है, ये धरती को धारण करता है, ये अच्युत अग्रज है, ये कृष्ण का बड़ा भाई है, और आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके घर में अनंत शेष साक्षात भगवान बलराम जी प्रकट हुए हैं। बलराम जी ने ये संकेत किया और फिर बहुत बड़े आनंद से उत्सव मनाया नंद बाबा ने बलराम जी के जन्म का। और दूसरे तरफ अब आइए कंस के कारागृह में, वसुदेव के मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कहां प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण? वसुदेव के मन में। जैसे ही वसुदेव के मन में भगवान श्री कृष्ण आए, वसुदेव के अंदर से सूर्य जैसा प्रकाश निकलने लगा। कोई वसुदेव को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, मिलना तो दूर की बात है, चमक रहा था वसुदेव। क्यों? क्योंकि भगवान उनके मन में आ गए थे श्री कृष्ण। भगवान अपि विश्व आत्मा, कौन सा भगवान आ गया था? विश्व आत्मा, जो पूरे विश्व के सब प्राणियों से प्रेम करते हैं और जिन सबके हृदय में बैठे होते हैं, वो भगवान आज वसुदेव के मन में। क्या काम करते हैं भगवान? वो भक्तानाम अभयंकर, अपने भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। आवेश अंश भागेन मन अनंक दुमदुबी, वसुदेव का एक नाम है अनंक दुमदुबी। उसका अर्थ ये है, जब वसुदेव का जन्म हुआ था तो देवताओं ने ढोल बजाए थे, दुमदुबियां बजाई थी। क्यों बजाई थी देवताओं ने? बोला इनके घर में हमारा रक्षा करने वाला साक्षात परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण बेटे के रूप में प्रकट होंगे। तो उनके जन्म के ऊपर देवताओं ने अपनी मृदंग खड़ताल दुमदुबियां बजाई थी, इसलिए वसुदेव का नाम था अनंक दुमदुबी, के नाम से मशहूर था वसुदेव। तो भक्तों का भय हरण करने वाले भगवान आज वसुदेव के मन में प्रकट हुए। वसुदेव बड़ा दीपायमान चमकमान चमकती चमकीला हो गया। और फिर लिखा है देव रूपेण देव, वसुदेव कैसा है? देवता जैसा है। सुर कहते हैं देवता को, जिसमें इतनी समर्थ सामर्थ्य है कि वो अपने मन से भगवान को देवकी को दे सकता है। सर्व मंगलम, सबका मंगल करने के लिए अच्युत अंश। अच्युत अंश का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण जिसके अंदर सारे अवतार प्रविष्ट कर गए। श्री कृष्ण के अंदर नरसिंह देव ने प्रवेश किया, श्री कृष्ण के अंदर भगवान रामचंद्र जी ने प्रवेश किया, वाराहदेव ने प्रवेश किया, कच्छ ने प्रवेश किया, मच्छ ने प्रवेश किया, जितने भगवान के अवतार हुए वो सब श्री कृष्ण में समा गए। अच्युत अंश, कोई अंश बाकी नहीं बचा, सारे के सारे अंश उसमें प्रवेश हुए। क्या हुआ उस भगवान का? वसुदेव के मन से वसुदेव ने प्रकट किए हुए भगवान को देवकी के मन में स्थापित किया। और देवकी के मन में आते ही भगवान ऐसे लगा जैसे आनंद कर कहते हैं चंद्रमा को, जिसकी किरणें सबको आनंद देती है, जैसे पूर्व दिशा में यहाँ सूर्य अस्त होता है, पूर्व दिशा में जैसे चंद्रमा उगता है ना, ऐसे देवत्की के हृदय में भगवान प्रकाशमान हो गए। इसको कहते हैं वसुदेव ने भगवान दिया, देवकी ने भगवान लिया। इसको कहते हैं गुरु शिष्य को जब दीक्षा देता है तो गुरु अपने मन के अंदर भगवान को साधन करके प्रकट करता है, अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। तो मानो वसुदेव ने देवकी को गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान उसके हृदय में स्थापित कर दिया। यही सनातन गुरु शिष्य के भगवत स्थापन करने की परंपरा है। आज देवकी चमकने लगी। ऐसे नहीं है कोई योग अभ्यास किया वसुदेव ने तब भगवान उनके मन में आया। भगवान भूत भाव, भगवान कैसा है, स्वयं अपनी इच्छा से आए, वसुदेव के मन में अपनी इच्छा से आए और फिर वसुदेव के मन से देवकी माता के मन में प्रकट हुए और फिर देवकी के मन से नीचे उतर के उदर में आ गए। देवकी थी तो लग तो सुंदर रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता कोई देख नहीं सकता था क्योंकि जेल में थी। एक वसुदेव केवल उनकी सुंदरता को देख सकता था। अभी तक कंस जेल में नहीं आया था, वसुदेव के मन में भगवान आए, कंस नहीं आया, लेकिन देवकी के मन में भगवान प्रवेश हुआ। कंस देखने के लिए आया, निरीक्षण करने के लिए आया। कंस अंदर आया और देवकी को देखे, बोला पहले तो यहाँ अंधेरी कोठड़ी थी, अब कोठड़ी के अंदर जेल के अंदर इतना प्रकाश कहाँ से आ गया, बड़ा प्रकाश जेल में कैसे, देवकी इतनी खुश क्यों दिख रही है, छह छह बेटे इसके मारे गए तब तो इसका मुंह उतरा हुआ था, आज तो बड़ी प्रसन्न लगती है, लगता है हरि जो मेरा प्राण हरेगा वो इसके उदर में आ गया है। कंस समझ गया, लेकिन देवकी जिसके हृदय में भगवान बैठा है उसको देखकर देवकी के सत्संग से उससे मिलने से कंस का मन बदल गया। कंस बोलता है देवकी स्त्री है और गर्भवती है, इसको नहीं मारूंगा, इसको मारूंगा तो मेरी नाम बदनाम होगा। अरे कंस, शादी के दिन तो तुम देवकी को तलवार उठा के मार रहे थे, बालों से पकड़ के, तभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, तब तुम्हारे को वसुदेव ने इतना कहा मत मारो तब तो तुम नहीं मान रहे थे, आज ऐसे क्यों कहते हो। तो कहते हैं उस दिन देवकी के हृदय में भगवान प्रकट नहीं हुए थे, आज देवकी के हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं। बोले भगवान क्यों देवकी के हृदय में प्रकट हुए हैं। बोला छह बच्चे देवकी के आंखों के सामने कंस ने मारे हैं, देवकी ने ये पीड़ा सही है, भगवान को दिल में लाने के लिए बहुत संकट सहा है देवकी ने। ये कौन थे छह बच्चे जिसको भगवान, जिसको कंस ने मारा था, ये छह बच्चे कौन थे। ये छह बच्चे मरीचि नाम के प्रजापति के पुत्र थे, छह देवता। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो एक बेटी को उत्पन्न किया था, उसका नाम था वाक। ब्रह्मा जी ने उस सुंदर अपनी लड़की को देखा तो ब्रह्मा जी के मन में काम वासना आई, अपनी लड़की के पीछे काम आतुर होके भागा, तो ये छह बच्चे हंसे थे। तो बड़े महात्मा को देखे कि कुछ गलत भी कर रहा है तो समझ में नहीं आता है, इन्होंने अपराध किया इसलिए वो असुर बने, एक जन्म में वो असुर बने, हिरण्यकश्यप के पोते बने, और फिर बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे तो हिरण्यकश्यप ने उनको श्राप दे दिया कि मेरी भक्ति नहीं करके तुम ब्रह्मा जी के पास गए हो, इसलिए अब तुमको तुम्हारा पिता ही मारेगा। तो कालनेमी के बेटे थे ये छह बेटे बन के छठ गर्भों के रूप में देवकी के पुत्र बने, और किसने मारा, कालनेमी कंस, उसके बाप ने ही अपने छह बेटों को मारा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हमारे आचार्य गणेश का अनुभव करके लिखते हैं कि मन का प्रत्येक मरीचि है और मन के छह अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये पांच छह अवगुण किसके हैं, मन के हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब तक हम इन छह शत्रुओं को नहीं मारेंगे तब तक भगवान हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा। लेकिन ये मरेंगे कैसे, देवकी भक्ति का रूप है, कंस भय है इस दुनिया में। जब हम भय करेंगे, दुनिया में भय डरना चाहिए, किससे? काम क्रोध लोभ ऐसी मन में भावना आए तब डरना चाहिए। कंस रूपी भय से देवकी रूपी भक्ति के मन के ये छह विकार काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जब मारे गए तब भगवान संकृष्ण प्रकट हुए और फिर भगवान श्री कृष्ण उनके उदर में प्रवेश किया। और जब श्री कृष्ण देवकी के उदर में आए तो फिर कंस का मन भी बदल गया। कंस ने कहा अभी नहीं मारूंगा देवकी को, जब बेटा जन्म लेगा तब इसको मारूंगा। और ऐसे कंस भी सत्संग के कारण वहां से वापस चला गया। अब देवकी अपने उदर के अंदर भगवान को संभाल के बैठी हुई। तब सारे देवता शंकर और ब्रह्मा जी ऋषियों को लेकर कंस की काल कोठड़ी में भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में गर्भ स्तुति करने के लिए आए। देवता ने गर्भ की स्तुति की। दुनिया में कोई गर्भ में आता है तो उसकी बहुत निंदा होती है, हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा जेल में जाने के बराबर है, लेकिन जब भगवान आते हैं तो देवता उसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप कितने बड़े सत्यवादी हैं, आपने हमको वचन दिया था और वचन पूरा करने के लिए आप इस दुनिया के अंदर आ गए, हमारी रक्षा करने के लिए आ गए, आप सत्य हैं, आपका वचन सत्य है, आपने जो कहा वो सत्य है। ऐसे देवताओं ने प्रार्थना की और फिर देवता प्रार्थना करने के बाद देवकी और वसुदेव कहते अब आप भय मत करो, भगवान आपके यहाँ प्रकट होने वाले। और तब समय होता है भगवान के प्रकट होने का। वसुदेव देखता है अद्भुत बालक, चार हाथ है, शंख चक्र गदा लिया हुआ है, माथे के ऊपर मुकुट है, पीला पीतांबर पहना हुआ है, कौत्सव मणि डली हुई है, वैजंती माला पहनी हुई है, ऐसा भगवान वहां प्रकट हुए। तो ऐसा बच्चा कोई पैदा हुआ है क्या यहाँ मॉरिशस में जिसको टोपा डला हुआ हो, कोट पहना हुआ हो और माला पहनी हुई, ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में? कोई बच्चा क्या आज जितनी दुनिया में जितनी भी संख्या है 6 अरब, उनमें से एक भी बच्चा इस दुनिया में एक कपड़े के टुकड़े के साथ पैदा नहीं हुआ है, कुछ भी अपने साथ नहीं लाया है कोई। लेकिन ये भगवान जब आए थे तो बहुत सुसज्जित श्रृंगार करके आए थे और वसुदेव ने देखा तो एकदम भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना की, फिर देवकी ने प्रार्थना की, फिर भगवान ने दोनों को कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, तुमने मुझसे कहा मेरे जैसा बेटा, मेरे जैसा तो कोई और होता नहीं है, मैं अपनी बात को सत्य करने के लिए 2 बार पहले तुम्हारा बेटा बना हूं, पहले प्रश्नी गर्भा के रूप में आपका बेटा बना, फिर मैं वामन देव होके आपके घर में आया, कश्यप और आप आदिति थे, आज देवकी और वसुदेव मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वसुदेव कृष्ण। तब देवकी ने कहा चार हाथों वाला बच्चे को जन्म दूंगी तो लोग हंसी करेंगे मेरी, आप छोटे बालक बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण एकदम छोटे बालक बन गए। जैसे ही छोटे बालक बने तो रोने लगे, तो देवकी बोले रो मत, कंस को पता लग जाएगा। तो भगवान ने वसुदेव को कहा तुम्हें डर लगता है कंस मुझे मारेगा, तो तुम ऐसे करो मुझे यहां से उठाओ, गोकुल में यशोदा माँ के पलंग के ऊपर मुझे रख के वहां एक लड़की हुई है उसको यहां लेकर आओ। ये जन्म के समय भगवान ने बातें की हैं सब, इसलिए भगवान का जन्म आम आदमी के जन्म जैसा नहीं होता है, अलौकिक है। यही श्लोक भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। जैसे ठीक तरह से भागवत में कृष्ण के जन्म को हम समझेंगे तो हमारा जन्म सफल होगा। इसके बाद की कथा कल, जन्माष्टमी के दिन कैसे नंद के घर में आनंद भयो और वहाँ कैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होता है, इसकी कथा कल भगवान की इच्छा से होगी। आज यहाँ वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की, दंड यशोदा मैया की।